दूसरा कह रहा है हमको देख के जिसको भी देखो
ये गीत ब्राह्मणों का है, ये गीत अब ब्राह्मणों का है, एक समय आएगा सारे विश्व का होगा। ये गीत अब ब्राह्मणों का है, एक समय आएगा समूचे विश्व का होगा, होगा ना?
मुसलमानों का होगा,
हिंदुओं का होगा, ईसाइयों का होगा, मुसलमानों का होगा, पारसियों का होगा, सब का होगा। जब परमात्मा बम गिरेगा संसार में तो क्या होगा? महाविस्फोट होगा।
मेरा बाबा आ गया।
एक महाविस्फोट होगा संसार में। बम गिरता है तो विस्फोट होता है ना? उस विस्फोट में क्या हो जाएगा? सारे अल्पकाल के साधन समाप्त हो जाएंगे, सारे आधार समाप्त हो जाएंगे, एक ही यथार्थ आधार राजयोग के द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। इतने सुंदर वाक्य है, साकार सृष्टि पर, साकार सृष्टि पर ज्ञान सूर्य उदय होगा, ऐसा आवाज मिलेगा एक दिन। तो आज क्या बोला बाबा ने, कौन किसको देख रहा है?
सेनापति
देख रहा है, आर्मी जनरल किसको देख रहा है? शक्ति सेना को देख रहा है और पांडव सेना को देख रहा है। देख देख कर अंदर ही उसे खुशी हो रही है। क्यों क्यों खुशी हो रही है? यही है वो जीत पाने वाले। और क्यों खुशी हो रही है? सेनापति अपनी सेना को देखकर खुश हो रहा है तो कुछ तो कारण होगा।
आगे बढ़ रही है सेना,
आगे सेना बढ़ रही है, इसके लिए उसको खुशी है। यही जीत पाने वाली है उसकी, उसको उसको खुशी है। और क्यों खुशी हो रही है? देख रहा है कि मेरे जो सिपाही है कितने शक्तिशाली है, वो तो है, पर जो मेरे सेना है उसको सेना के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास है। और क्यों खुशी हो सकती है किसी सेनापति को अपनी सेना देखकर?
क्योंकि उसका ऑर्डर मान रहे हैं,
वो आज्ञाकारी है, जैसा वो बोलेगा वैसे वो करेंगे।
विजयी
है वो। इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई देयर इज बट टू डू एंड डाई। हाँ वो भी है, ये जो एक कहावत है इसका अर्थ है कि ऐसा नहीं पूछना होता है। आर्मी में नियम है, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई, क्यों नहीं पूछा जाता है, देयर इज बट टू डू एंड डाई, करो और मरो, बस पूछना नहीं। आर्मी में, आर्मी में ये पूछा नहीं जाता है कि ऑर्डर मिला जाना है तो जाना है, बस सोचना नहीं है,
करो और मरो,
बस ये नियम है आर्मी
का। मारो।
तो सेनापति को अपनी विश्व विजयी सेना देखकर विजय खुशी हो रही है। लड़ाई किसके साथ है? विश्व विजयी सेनापति माया के साथ लड़ाई है। माया के भी सेनापति, माया के भी घोड़ेसवार और महारथी बहुत शक्तिशाली है, उनके साथ इस सेना की का युद्ध है। क्यों खुशी हो रही है? एक तो आज्ञाकारी है, दृढ़ संकल्प वाले है, सारे पीछे हटने वाले नहीं है, घर भागने वाले नहीं है। शत्रु थोड़ा शक्तिशाली हो गया तो पलायनवादी नहीं है,
डटे रहेंगे
मैदान में, भागने वाले नहीं है। आर्मी में नियम होता है ना, बताया था ना, ये आर्मी का नियम होता है, यहाँ से इधर जाना, इधर शत्रु है, एक खाई बीच में है तो एक पुल बांधा जाता है, ब्रिज, एक बार उधर चले गए कि ब्रिज को तोड़ देते ताकि वापस आने का चांस ना हो। भागना नहीं है, एक बार जिस मार्ग पर आगे चल दिए फिर पीछे नहीं मुड़ना है, एक बार चल दिए तो फिर वापस आने का कोई मार्जिन नहीं, इच्छा ही ना हो या कोई साधन ही ना हो वापस आने का। तो ऐसी सेना को देखकर उसको बहुत खुशी हो रही है। और क्यों खुशी हो रही है उसको? अस्त्र शस्त्र अमोघ अस्त्र है, अचूक अस्त्र है, हर एक के पास अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, स्टॉक भी फुल है। और क्यों है? सभी केवल बाहुबल वाले नहीं है, योग बल से विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले। सबके पास तीन प्रकार के बल महाभारत में वर्णन है, बाहुबलम, बुद्धि बलम, योग बलम। सबसे पहले बाहु का बल, जिसके पास बाहु का बल होता है वो भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, लोगों को हरा देते हैं, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली होते हैं जिनके पास बुद्धि का बल है, ऐसे एकदम पतले परंतु बुद्धि बहुत मेधावी बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि होती है जिनके पास, प्रखर बुद्धि। हाँ, साइंटिस्ट जो है वो जितना भी मोटा व्यक्ति हो, तगड़ा हो, शक्तिशाली हो, बाहुबल है, उससे भी अधिक शक्तिशाली है बुद्धि बल, और बुद्धि बल से भी अधिक शक्तिशाली वो आत्माएं हैं जिनके पास योग बल है। वो एक ही जगह बैठकर सारे विश्व को हिला दे सकते हैं, ऐसी शक्ति उनके पास होती है, ऐसी पावर उनके पास होती है, वो है योग बल वाली आत्मा। तो सेनापति देख रहा है कि मेरी सेना वाले जो है वो सारे योग बल वाले, इसके लिए उसको खुशी हो रही है। और क्यों खुशी हो रही है उसको?
योग बल को यूज करना आता है।
प्रयोगी आत्माएं हैं, केवल ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं है, केवल योग करने कराने वाले नहीं है, परंतु प्रयोग करने वाली आत्माएं हैं। और विठल भाई क्यों खुशी हो रही है सेनापति को? बहुत ही अंदर ही अंदर उसको गदगद हो रहा है अपनी सेना को देख कर।
मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे,
मंजिल पर पहुंचे कि पहुंचे। और
यही है दम तोड़ने वाले परमात्मा,
यही वो विजयी आत्मा है जो कल्प पहले भी इन्होंने ही विजय पाई थी।
प्रत्यक्ष प्रमाण देने
वाले, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाले इनको मैंने चुना है। ये वो है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है कि ऐसे ही भेड़ बकरियों की सेना नहीं है, ये शेर की तरह दहाड़ लगाने वाली सेना है। ये निर्भय निर्भीक आत्माएं हैं। ये
खतरनाक है
दुश्मन के लिए। क्या है ये
दुश्मन के लिए? आखिरी बॉम्ब
है दुश्मन के लिए। क्या है
दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले?
महाकाल का रूप है दुश्मन के लिए। ये ऐसी सेना है कि दुश्मन इनके सामने टिक नहीं सकते। ऐसी पावरफुल, ऐसी शक्तिशाली सेना, ये वही सेना है जिसको उसने स्वयं रचा है। ये वही सेना है जिसने उसमें स्वयं शक्ति भरी है। इनमें केवल आत्म ज्ञान नहीं है, इनमें परमात्म ज्ञान है। इनमें केवल आत्म का विल पावर नहीं, इसमें परमात्म विल पावर है। इसमें केवल आत्मा का बल नहीं है, परमात्मा बल जुड़ा हुआ है इन आत्माओं में।
विजय श्री इनके साथ है,
विजय श्री इनके साथ है,
शिवा साथ है,
स्वयं भगवान इनके साथ है। इनकी हार तो हो ही नहीं सकती, असंभव है। एक के डायरेक्शन पे चलने वाले, एक मत वाले है, एक मत एक रस स्थिति वाले है, एक की लगन में मगन है, एक से सर्व संबंध वाले है, एक बल एक भरोसा वाले, एक बाप दूसरा ना कोई वाले, एक बाप
जान चला जा रही बाप को प्रत्यक्ष करने,
बाप को प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य इन आत्माओं में। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं कि संसार में ऐसी आत्माएं नहीं है, और गई चुनी हुई आत्माएं, ऊंचा पाठ, सारे कल्प में हीरो पाठधारी आत्माएं, केवल इस संगम पे नहीं, ऊंची स्थिति वाली आत्माएं हैं। ऊंची स्थिति वाली आत्माएं हैं तो राज्य में भी ऊंची है, तो भक्ति में भी ऊंच है, तो विश्व के सामने पूज्य बनने में भी ऊंच है, तो बाप के बच्चे भी ऊंच है, तो ज्ञान में भी ऊंच है, हर पाठ बजाने में ऊंच। ऐसी ऊंची आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी विश्व की हीरो पाठधारी आत्माएं, ऐसी आत्माएं भूतो न भविष्यति आत्माएं जो संसार ने आज तक कभी देखा नहीं, ऐसी इष्ट देव आत्माएं हैं। ऐसी आत्माएं जिनमें प्यूरिटी भरी हुई है, ऐसी आत्माएं जो रहम दिल है, ऐसी आत्माएं जिसमें सिंप्लिसिटी है, ऐसी आत्माएं जो सुख हरता दुख हरता सुख करता, ऐसी आत्माएं जो वरदानी है, ऐसी आत्माएं जो अचल अड़ो स्थिति वाली है, ऐसे इष्ट देव है ये, ऐसे न्यारे और प्यारी आत्माएं, ऐसी सिंप्लिसिटी वाली आत्माएं, ना अति ऊंच ना अति नीच, मध्यम वाली आत्माएं, बीच की आत्माएं, साधारण, एकदम साधारण नहीं और एकदम ऊंच भी नहीं, सिंप्लिसिटी और रॉयल्टी का बैलेंस रखने वाली, संतुलन वाली, ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं, जिनकी वैराग्य वृत्ति विश्व के ऐसी सर्च लाइट आत्माएं, ऐसी पावर हाउस आत्माएं, ऐसी महान आत्माएं,
चमकते हुए
सितारे हैं, इनके भाग इनके भाल पर चमकता हुआ सितारा है जो सबकी नजर अपने तरफ खींच लेता है, न चाहते हुए भी नजर एक तरफ घूम जाती है आत्माओं की। ऐसी आत्माएं, ऐसी आत्माएं कहाँ से आई है? ये संसार की आत्माएं परेशान है इनको देख कर कि ये कौन आत्माएं हैं, कहाँ से आ गए हैं ये आत्माएं, जिनके आते ही विश्व में अंधकार दूर हो गया और उषा का आगमन हो रहा है। कौन आत्माएं हैं? मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं। ऐसी सेना को देखकर
हर्षित हो गए
बाप।
क्यों हर्षित नहीं होगा फिर?
हर्ष हो रहा है उसको, मेरी विजय तो निश्चित है, उसको हर्ष हो रहा है कि मेरी विजय निश्चित है। हुई पड़ी, कोई रोक नहीं सकता विजय को। बाप को नशा चढ़ा, और उसमें जिसको देख रहा है वो महारथियों को देख रहा है जो हाथी पर सवार है, सेना में कुछ हाथी पर सवार है, कुछ घोड़ों पर सवार है, कुछ पदाति सैनिक प्यादे हैं, पर एक एक से बढ़कर सभी शक्तिशाली है। देख रहा है इनका क्या क्या पार्ट है, अब तक जो पार्ट बताया बजाया बहुत अच्छा, महारथी आत्माओं के कर्तव्य को देख रहा है, सेनापति के कर्तव्य को देख रहा है, और देख देख कर अंदर ही अंदर खुश हो रहा है। और क्या बोल रहा है, और आगे आगे क्या बोला, जैसे उस सेनापति, वो सेनापति क्या क्या करता है, छह बातें नक्शे में देखता है, क्या क्या चीजें देखता है नागेश भाई, सबसे पहले तो कहां तक पहुंचे हैं, आबू तक आ गए, यहां तक पहुंचे, कौन कौन सी एरिया को विजय प्राप्त किया है, सारा गुजरात कंट्रोल में आ गया है, अभी आबू तक आ गए, देख रहा है कौन कौन सी एरिया पर विजय प्राप्त की है, देख रहा है अस्त्र शस्त्र बारूद में स्टॉक जमा तो है, वो देख रहा है, आगे क्या देख रहा है, मंजिल कहां तक है, दूरी कितनी है और किस स्पीड से चलते हैं, ऐसी छह बातें देखते हैं नक्शे में,
नक्शे से देखते हैं,
नक्शा निकालते हैं ना सेनापति, यहां तक पहुंचे हैं, ये एरिया हमारी हो चुकी है, इतना सामान है, लक्ष्य ये है, किस स्पीड से चल रहे और कब तक पहुंचेंगे, कितनी दूरी है उस तक मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो ये सारा मैप देखकर पता कर रहा है कौन, संसार के सेनापति, तो ये सेनापति क्या देख रहा है, ये भी देख रहा है कहां तक पहुंचे, कहां कहां विजय प्राप्त की है,
कहां तक कर्मातीत बने,
कहां तक निर्विकारी बने, ऐसे नक्शे, बाप भी नक्शे को देखकर ये सोच रहा है। बाबा ने कहा कि विजयी तो अच्छे बने हैं, विजयी तो अच्छे बने हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, बारूद भी अच्छा है, स्टॉक भी तुम्हारे पास अच्छा है, पर यदि अभी परमात्मा बॉम्ब बनाया है, आत्म अरे सॉरी आत्म बॉम्ब बनाया है, परमात्मा बॉम्ब नहीं बनाया हुआ है, तो आत्म बॉम्ब कौन सा बोला, आत्मा का बॉम्ब कौन सा है,
आत्मिक शांति,
आत्मिक शांति का अनुभव करा दिया, आत्मिक सुख का अनुभव करा दिया, रूहानियत का अनुभव करा दिया, पर परमात्मा बॉम्ब वो है बाप को प्रत्यक्ष करना, वो अभी नहीं है, महाविस्फोट होगा संसार में जब ये बॉम्ब गिरेगा, तो
इसमें कनेक्शन है कि परमात्मा का प्रत्यक्षत्व और परमानंद भाव में एक साथ विस्फोट,
परमात्मा बॉम्ब ये नहीं, परमात्मा प्रत्यक्षता एक है, संपूर्णता हमारी संपूर्णता, विनाश और बाप की प्रत्यक्षता, ये तीन टॉपिक है चिंतन के, एक तरफ विनाश, एक तरफ हमारी संपूर्णता और एक तरफ प्रत्यक्षता, सब साथ साथ चलेगा, तीनों चीजें, हाहाकार होगा संसार में एक तरफ, उस बीच में बाप की प्रत्यक्षता भी होगी, संगम युग का स्वर्णिम युग होगा, भाग्यशाली होगी वो आत्माएं जो बाप की प्रत्यक्षता को देख सकेगी संसार में उस समय, तो इसका आधार क्या है, क्या और एक चीज बोली, जो भी आए, जो भी देखे केवल आपको, जो भी संपर्क में आए, उसके मुख से क्या निकले, कि बाबा आ गया, बाप आ गया, ऑलमाइटी सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, ऑलमाइटी डायरेक्ट डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है, और हरेक के मुख से निकलेगा, कब निकलेगा, देख कर खाली, केवल तुमको देखेंगे और निकलेगा, देखकर और संपर्क में आकर। कैसा जबरदस्त प्रोग्राम है, यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। तब उनके चेहरे फीके पड़ जाएंगे, इनको भगवान पढ़ा था, मुंह फीका पड़ जाएगा, पश्चाताप होगा, खून के आंसू बहाएंगे, ब्राह्मण बनेंगे। तो ऐसी भगवान की प्रत्यक्षता होगी चारों ओर, केवल परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं होगी, अष्ट रत्नों की प्रत्यक्षता होगी, 108 आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी, केवल उनकी प्रत्यक्षता नहीं होगी, रॉयल फैमिली में आने वाली आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी, इष्ट देव आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी, कौन क्या क्या बनने वाला है उसको, उसकी प्रत्यक्षता भी वहीं पर होगी। चारों तरफ कैसा सीन होगा, जहां देखूं वहां तू ही तू, सारे ब्राह्मणों में ही आत्मा को परमात्मा दिखाई देगा। जो तपस्वी है शंकर यहाँ पर सारे, वो सारे शंकरों में शिव दिखाई देगा, तो भक्ति में जाके शंकर और शिव को एक कर देंगे। फिर हरेक में वो दिखाई देगा, तो भक्ति में गायन होगा कि जहां भी देखता हूँ हरि व्यापक सर्वत्र समान, जहां भी देखो प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, अजम शाश्वतम विभुम व्यापकम, जहां पर भी है वहां पर व्यापक हो जाएगा वो, क्योंकि उनको वैसा ही देखेगा प्रत्यक्षता में, हरेक के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखेंगे, उनको लगेगा कि यही है हमारे द्वारा सन शोज फादर, पुत्र के द्वारा पिता की प्रत्यक्षता होगी। उनको ऐसा होगा कि बस रोको इस प्रकाश को, चकाचौंध करने वाला ये प्रकाश, बस ऐसी उनकी अवस्था होगी। भक्तों को साक्षात्कार हो गए, सन्यासी तुम्हारे चरणों में आकर गिरेंगे, नास्तिक भी आस्तिक बन जाएंगे, न मानने वाले भी मानने लगेंगे, वातावरण में परमात्मा प्रेम की तरंगे फैलेगी। एक तरफ साक्षात्कार होगा आत्माओं को, हमको भी साक्षात्कार होगा, दूसरी आत्माओं को भी साक्षात्कार होगा,
साइंस पर साइलेंस की विजय,
साइलेंस की विजय होगी, साइंस की हार होगी, सब नतमस्तक हो जाएंगे, सब पश्चाताप करेंगे कि हमने इनकी ग्लानी की थी, मुस्लिम सिख ईसाई सब 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 सर्व धर्म की आत्मा यहाँ आ जाएगी। प्रत्यक्षता का आधार है आगे सत्यता, सच्चाई, सत्यता सच्चाई, सत्यता कहो या सच्चाई कहो एक ही चीज। सत्यता के लिए बाबा ने क्या क्या कहे हुए वाक्य है, सत्यता के लिए बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है, सत्यता के लिए बाबा ने अब तक कहे हुए वाक्य, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही सुंदर है और वही शिव है, सच तो विठो नच, जिसमें सत्यता की शक्ति है वही नाच सकते हैं, बाकी तो सब आंगन में दोष देखेंगे, पर जिनमें सत्यता है वो आंगन कैसा भी हो वो नाच सकेंगे। तीसरा, सत्य के सूर्य को असत्य के बादल नहीं सकते, सच की नैया हिलेगी असत्य की नैया, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, और असत्य की नैया हिलेगी डुलेगी नहीं सीधा ही डूबेगी। ऐसा लगेगा वाह भगवान तो देखो सीधा डूब जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, नाम और निशान नहीं रहेगा, और हो गया
सच के अलावा तप नहीं
एक एक सब हजार झूठ हो चुका है
सच में नहीं वो
कहते
सच के
दिल तो कैसे
कैसे सच को झूठ हाँ ये इसमें वो सत्य स्वयं सिद्ध है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं और आपने जो बोला ना उसमें उदाहरण है राम और रावण का रावण जब दोनों का युद्ध होता है तो रावण सारे आकाश में बाण फैला देता है राम एक बाण मारता है वो सब खत्म वो सब असत्य था ये सत्य था एक ही बाण सत्य का और वो सब खत्म चाहे वातावरण में कितना भी कोई निंदा करे हमारी पर यदि हम सत्य है तो वो सब समाप्त हो जाएगा सच्चे दिल पर साफ दिल तो बुरा था बाबा ने बहुत कुछ कहा है सत्य के ऊपर
सत्य अर्थात अविनाशी
अविनाशी
सत्य
सत्य में विजय थे उपनिषद का महावाक्य मुंडक उपनिषद तो सत्यता सत्यता के लिए क्या कहा उसका भी आधार दो बातें बोली आज एक तो सच्चता दूसरी निर्भयता थोड़ी भी असच्चता अगर है तो क्या हो जाएगा वो तो है इसके लिए बोलो एक बहुत अच्छा वाक्य है यहाँ पर असच्चता थोड़ी भी है तो क्या हो जाएगा कर्तव्य की सिद्धि और प्रत्यक्षता नहीं होगी सत्यता भी दो चार सत्यता बोली सत्यता अपने स्थिति की सत्यता सेवा की सत्यता अपने स्वरूप की सत्यता बोल की सत्यता कर्म की सत्यता सत्यता कहो सच्चाई कहो एक ही चीज है तीन चीजें एक सत्यता एक स्वच्छता एक निर्भयता तो सबसे पहले सच्चाई या सत्यता कौन सी सत्यता क्या कहा सत्यता जो ओरिजिनल स्वरूप है कौन सा जो हूँ जैसा हूँ ओरिजिनल स्वरूप सतो प्रधान स्वरूप जो है वो है सत्यता और जो तमो और रजो है वो क्या है वो बाबा ने कहा संग का दोष वो संग दोष है तो हमारा सत्य कब है केवल सत्य बोलना नहीं है सत्यता को क्या माना जाता है संसार में सत्य बोलना सत्य सोचना या करना इसी को सत्य माना जाता है हमारा सत्य केवल इतना छोटा सत्य नहीं है सत्य हमारा जो है हम कब कहेंगे कि हम सत्य पथ पर हैं सत्य पथ के पथिक हैं हमारा सत्य है अपने सत्य के स्वरूप में सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित होना मतलब रजो तमो भी नहीं सतो भी नहीं रजो तमो भी नहीं और सतो भी नहीं
उससे नीचे आता
भक्ति में कहानी है कि तीनों ही डाकू है सतोगुण सतगुण भी डाकू है रजोगुण भी डाकू है और तमोगुण भी डाकू है एक चोर जा रहा है उसको तीन डाकुओं ने पकड़ा सबसे पहले डाकू ने उसको बांध दिया झाड़ से दूसरा डाकू था उसने उसकी बहुत पिटाई की और सब छीन लिया उससे तीसरा भी डाकू था पर वो थोड़ा अच्छा था उसने उसको छुड़ाया और कहा कि ये मार्ग है गांव की तरफ जाने वाला जाओ पहला जो था वो था तमोगुण जो बांधता है दूसरा जो था वो था रजोगुण जो मारता है लूटता है छीनता है रजो रज राजस है उसमें क्रोध है पहला बांधने वाला है पहला रजोगुण रजोगुण में आवेश होता है तमोगुण अर्थात आलस्य निद्रा प्रमाद भक्ति के हिसाब से जिसमें ये सब जो बांधता है संसार में और तीसरा जो है वो छुड़ाता तो जरूर है पर मंजिल तक नहीं ले जाता है वो केवल मार्ग बताता है वो है सतोगुण तुमको बनना है सतो प्रधान सतो प्रधान अर्थात सतो की प्रधानता जहाँ पर 100% प्रधानता सतो की जो मंजिल तक खाली और सतोगुण तो मार्ग दिखाता है पर वो भी डाकू ही है वो भी बांधता है वो भी सोने की जंजीर है ना इधर के ना उधर के मोह जो है दास संडे बोला था ना मोह उड़ने नहीं देता है ना इधर का रहने देता है ना उधर का रहने देता है। सूक्ष्म मोह, महीन मोह वो भी बांधता है, उससे भी ऊपर। तो हमारा सत्य स्वरूप है जो हूं जैसा हूं उसमें स्थित होना, ये पहली। और जो तमो अगर मिक्स है तो वो भी क्या है, संग दोष, माया का संग दोष। कितनी सूक्ष्म बात है। दूसरा है बोल, फिर है कर्म। फिर बाबा ने पूछा
संकल्प
असत्य, वो आगे वो स्वच्छता है, ये सत्यता। फिर बाबा ने कहा ये नेचुरल रूप में सत्यता है कि अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, इसे धारण करने के लिए ये सत्यता नेचुरल रूप में है, ऐसी सत्यता। निरंतर अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थित, केवल स्वयं स्थित नहीं दूसरों को भी उस स्वरूप में स्थित देखना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, संपूर्ण पावन आत्मा हूं। परमधाम की जो स्टेज है वो है हमारी सत्य स्वरूप से, या फिर सतयुग की जो स्टेज है वो हमारी सतयुग के पहले जन्म की स्टेज, वो हमारी ओरिजिनल स्वरूप की स्टेज है। उसमें अगर स्थित है तो सत्य, नहीं तो संग दोष, माया, माया का संग। जैसे उदाहरण दिया है कि यहां पर कौन सा, जैसे बाप पृथ्वी है तो आत्मा की वास्तविकता भी सतो प्रधानता है। सतो प्रधानता ही प्रत्यक्षता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। जैसे बाप ट्रुथ है, ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। महात्मा गांधी ने तो लिखा है कि गॉड ट्रुथ है या नहीं ये मुझे पता नहीं, पर ट्रुथ गॉड है। उसने ट्रुथ को गॉड से भी ज्यादा माना। भगवान सत्य है या नहीं वो नहीं पता मुझे, पर सत्य भगवान जरूर है। सत्य का उपासक है ना, सत्य की उपासना करने वाले संसार में बहुत सारे लोग हैं। सत्य को सर्वश्रेष्ठ क्या कहा जाता है, व्रत कहा जाता है। कई सालों तक जो सत्य बोलता है ना, शास्त्र में लिखा है 12 साल तक अगर कोई सत्य बोले उसके बाद उसके मुख से जो भी निकलेगा वो वरदान ही होगा, वो सत्य ही होगा, जो भी वो बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। केवल
12 साल
इवन मौन, अगर कोई मौन में चला जाए तो जो भी संकल्प करोगे वो पूरे पूरे हो जाते, जो भी सोचोगे कि वो आ जाए सामने तो व्यक्ति आ जाता है। संपूर्ण मौन, मुख का भी और मन का भी, पर मुख का भी, यहाँ मुख की बात चल रही है संसार के हिसाब से। परंतु वो अंदर जब, मतलब जब मुख का मौन है तो अंदर ज्ञान चिंतन चलता रहे, ऐसा नहीं कि अंदर द्वेष, कोई बदला, कोई षड्यंत्र तो नहीं होगा। मौन तो है पर अंदर 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 दुखी है, जल रहे हैं, युद्ध चल रहा है, वो नहीं। ज्ञान चिंतन, ज्ञान चिंतन अंदर और मौन दोनों हो जाए। बाबा ने मुरली में भी कहा था ना, पहले तुम भट्टिया करते थे, अभी तो संभव नहीं है, अभी तो कामकाज है, धंधा दोरी है। अभी साकार मुरली में आए थे ना, 3-4 घंटा योग करते थे। तो सत्यता ही प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, सत्यता अर्थात स्थिति की सत्यता, सत्यता अर्थात सेवा में सत्यता, सत्यता अर्थात कर्म में सत्यता, सत्यता अर्थात बोल में सत्यता। ये इतना बोला है और तो बहुत सूक्ष्म है। फिर संकल्पों में सत्यता, वृत्ति में सत्यता, दृष्टि में सत्यता, दूसरों के प्रति एटीट्यूड, दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं उन भावनाओं में सत्यता, भाव और भावनाओं में सत्यता, दुर्भावना हो दुर्भावनाएं ना हो उसमें भी सत्यता। सत्यता बड़ी गुह्य बात है। तो ये हो गया सत्यता। उसके बाद है स्वच्छता, स्वच्छता अर्थात क्लीनलीनेस, सफाई, प्यूरिटी, क्लीनलीनेस जिसको कहते हैं। क्या कहा उसके बारे में, संकल्प में भी कोई अशुद्धि नहीं, अशुद्धि अर्थात अशुद्धि अर्थात बुराई अवगुण। टच की परिभाषा क्या दी? दो बातें बोली, एक तो टच एक तो धारण। टच ना करे और धारण ना करे, दोनों की अलग अलग परिभाषा बाबा ने दी है। टच ना करे अर्थात दूसरों की बुराई को सोचना अर्थात टच करना, अशुद्धि को धारण करना अर्थात सुनना बोलना और करना अर्थात धारण करना। ये तीनों भी ना हो, ये दोनों चीज भी ना हो, टच भी नहीं करना है और धारण भी नहीं करना है। उदाहरण जैसे, उदाहरण दिया एक वहां पर, जैसे कौन सा उदाहरण दिया? कोई भी खराब चीज होती है तो तुम उसको देखते भी नहीं, किनारा करते हो, देखते भी नहीं,
अच्छा नहीं,
अच्छा नहीं लगता है, देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो वैसे बुराई अवगुण को सोचना भी, क्या कहा बाबा ने, सोचने को भी टच करना कहा है, इसी के अवगुणों का चिंतन। संकल्प में भी अशुद्धि ना हो, किसी के अवगुणों का बैठकर चिंतन करना, केवल चिंतन, संकल्प, सोच, वर्णन करना तो धारण करना हो गया, वर्णन करने को बाबा ने धारणा में डाल दिया, ये है टच किया, पहले टच और एक है धारण। सोचना अर्थात टच करना, सुनना, बोल नहीं रहे, कोई बैठ के सुना रहा है, तुमको पता है क्या इसने क्या क्या किया?
ये का
धारणा का हो गया, कितना सूक्ष्म है। स्वच्छता किसको कह रहे हैं बाबा? क्लीनलीनेस, स्वच्छ, साफ, शुद्धि,
ये अभियान है अपना,
स्वच्छता अभियान। संसार तो, संसार की सरकार कौन कहते हैं? ये परमात्मा सरकार है, ये गवर्नमेंट है, पांडा गवर्नमेंट जो अभियान चला रही है वो स्वच्छता अभियान है, हृदय की शुद्धि करने का।
टच नहीं करना,
उनकी है हाथ की सफाई, तुम्हारी है बुद्धि की सफाई। वो हाथ की सफाई से जादू करते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि की जादूगरी है, ऐसे तुम रूहानी बाजीगर हो। तो हृदय को स्वच्छ करना, हृदय को शुद्ध करना, संकल्प में भी बुराई और अवगुण टच ना करते, कितनी बड़ी मंजिल है। सुनना भी आ गया उसमें, बोलना और करना तो बहुत दूर, करना तो इधर, सम इधर, उसके पहले बोलना और उसके भी पहले सुनना। सुन के खुश होना अंदर ही अंदर, बोल नहीं रहे ना कर रहे पर सहमत, सहमति दे रहे, मुंह को सहमति दे रहे कि बराबर है, तुमने जो बोला ना ये ऐसा ही है।
सुनना भी तो सहमति है ना।
हाँ वही सुनने की बात चल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास क्यों आ रहा है सुनाने? क्योंकि पहले भी तुमने सुना होगा। शत्रु का शत्रु का शत्रु तो मित्र होता है, शत्रु का शत्रु मित्र है, तो इसलिए मित्र के पास जा रहे तो सुनने, तो अच्छा लगता है ना। तुम्हारे साथ ऐसा किया? मेरे साथ भी एक बार ऐसा किया था, तुमको ऐसा बोला, तुमको ऐसा बोला, मुझे भी बोला था। किसी व्यक्ति की ग्लानी करने में कितना आनंद आता है, इसे हिंदी साहित्य में निंदा सुख कहा जाता है। निंदा सुख, निंदा करो तो सुख की अनुभूति होती है, एक अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, ऐसा लगता है बहुत चलने दो लंबा, जितना उसका विस्तार करो उतना अच्छा होता है। ज्ञान का विस्तार करने में कहते हैं कि हमको, हमारा बुद्धि चलती नहीं है, हमारी बुद्धि हमको आता ही नहीं है ज्ञान का चिंतन करने।
पहले के जन्मों में हमने किया, इसलिए आदत सहज हुई
है। किसकी? इसकी ना, निंदा करने की, यही तो किया है जन्म जन्म। निंदा करना सबसे सहज काम है और स्तुति करना कठिन काम है। सच्चे दिल से कोई कहे ये कैसा है तो दिल से निकले बहुत अच्छा, ये सबसे, संसार का सबसे कठिन काम ये, कठिनतम कार्य है। और सबसे सहज कार्य कौन सा है? किसी के अवगुणों का चिंतन, किसी के अवगुणों का वर्णन, किसी के अवगुणों को प्रसारित करना। एक नई आत्मा है जिसको उस आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं, उस आत्मा के हृदय में उस आत्मा के बारे में निगेटिव भरना, उस आत्मा के बारे में जो पहले से अच्छी छवि थी उसको खत्म करके एक निगेटिव इम्प्रेशन बनाना, ये पाप कर्म है। पहले वो कैसा भी हो परंतु वो आत्मा उसके बारे में अच्छा सोचती है, पर हमको पता है ये ठीक नहीं है, उसको जाके सुनाना ये जो तुम सोच रहे हो अच्छा, ये दिस इज रॉन्ग, वास्तव में आत्मा ये ऐसे ऐसी ऐसी है। तो उसकी जो इम्प्रेशन था वो गलत हो गया, अभी खराब हो गया।
किसी को अगर स्टेट भी करना है तो तरीके से करना चाहिए, उसकी गिलानी नहीं बल्कि
गिलानी।
किसी एक आत्मा के प्रति भी निगेटिव संकल्प है तो विश्व कल्याण करेंगे।
किसी भी एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारे हृदय में अगर घृणा का भाव है तो संपूर्ण नहीं बन सकते हो, व्यक्त महावाक्य भाव। एक ही आत्मा के बारे में घृणा भाव है,
अगर सब निगेटिव भी है तो सच्चा भी है तो भी उसको पॉजिटिव करो।
बस कल का वरदान क्या था स्लोगन, अपने श्रेष्ठ और शुभ वाइब्रेशन से क्या कर दो, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। सेवा में स्वार्थ था वो वाला बोल रहे हो,
सेवा में स्वार्थ।
अगर सेवा में स्वार्थ हो, खुद का स्वार्थ या दूसरों का स्वार्थ, सेवा में अगर स्वार्थ है, स्वयं का स्वार्थ तो दूसरों का स्वार्थ, तो सेवा में डिस्टर्बेंस होगा। इसके लिए स्वार्थ से न्यारे, संबंधों में प्यारे संबंध। भले सेवा खुशी खुशी करो, परंतु सेवा में यदि बोझ का अनुभव नहीं होना, बोझ का अनुभव ना हो। सेवा में स्वार्थ, कौन कौन से स्वार्थ आते हैं सेवा में, मेरा नाम हो जाए। ज्ञानामृत में तो छपना चाहिए फोटो,
एनएमएस की गोली, नाम मान
शान, कीर्ति, नाम, प्रशंसा, कितना खुशी होती है अंदर के अंदर, गदगद होता है हृदय सुनकर, होता है कि नहीं? कोई प्रशंसा करे तो खुशी होती है ना। एक योगी के लिए ये सब विष की समान है। प्रशंसा में जिसको बहुत खुशी होती है, जब निंदा होगी तो उतना ही दुख भी होगा, ये भूलना नहीं।
स्वीकार किया तो अपमान भी स्वीकार करना,
स्वीकार किया ना तो वो भी स्वीकार करना पड़ेगा। और आज प्रशंसा करने वाले कल निंदा करेंगे, याद रखना, जरूर।
वहाँ के मूर्खों की प्रशंसा के जगह बुद्धिमानों की डांट सुनना अच्छा है।
अच्छा है,
मूर्खों से प्रशंसा सुनने के बजाय बुद्धिमानों की डांट सहना अच्छा है।
सुधार तो होगा ना।
तो सेवा में स्वार्थ है क्या, मेरा नाम हो जाए, मान मिल जाए, प्रशंसा हो जाए, कीर्ति हो जाए, नाम छप जाए, फोटो आ जाए कहीं, वाह वाह निकल जाए। भगवान कहते हैं भक्ति में कि यह कहावत, भगवान दो समय हंसता है। सबसे पहली बार हंसता है दो भाई खड़े हैं और जमीन पर ऐसी लाइन खींच रहे और कह रहे आज से ये तेरी जमीन, ये मेरी जमीन। भगवान सोचता है सभी भूमि गोपाल की, सारी मेरी भूमि है और ये देखो मूर्ख। दूसरा भगवान हंसता है जब कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कहता है कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। भगवान कहता है अरे मूर्ख, ये अभी मरने वाला है। कोई कहे कि आप तो भगवान हो, मुझे ठीक कर दिया, अरे मूर्ख। ठीक होने की प्रोसेस कुछ और है, कर्मों की कोई गति है, वहां कोई ठीक नहीं कर रहा है किसी को। तो सेवा में स्वार्थ, हम कहाँ चले गए, चलो वापस आ जाओ, कहाँ थे, स्वच्छता। तो संकल्प में भी अशुद्धि नहीं, ये है संपूर्ण स्वच्छता। उदाहरण दिया, कोई गंदी चीज, खराब चीज देखते हुए नहीं किनारा करते हो, वैसे इसको भी किनारा करते हो, अशुद्धता। उसके बाद है निर्भयता। संसार में निर्भयता किसको कहा जाता है, ये जो निर्भयता की बात बताई है कितनी भिन्न है, किसने सोचा भी नहीं होगा ऐसी निर्भयता। आज तक संसार में किसको निर्भयता कहा जाता है, निर्भय अर्थात शेर आ गया उससे मुकाबला किया वो है निर्भय, शत्रु के सामने जाओ वो है निर्भय, मृत्यु का जिसको भय नहीं लगता वो निर्भय, संसार की मान्यता है। वो भी अच्छी बड़ी बात है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, जिसको मृत्यु से भय नहीं है वो निर्भय, बीमारी से जिसको भय नहीं लगता, निर्भयता बहुत बड़ा गुण है। निर्भयता हर वस्तु में भय है एक्चुअली संसार की, भरतरी वैराग्य शतकम है ना, उसमें कितना अच्छा लिखा हुआ है, रूपे जराय भय, जो रूपवान है बहुत सुंदर है, उसको भय रहता है मैं बूढ़ा तो नहीं हो जाऊं, गुणे खल भयम, जो गुणवान है उसको भय रहता है कई लोग मेरी निंदा ना कर दे, जो राजा होता है वृत्त नुपालक भयम, जो राजा होता है उसको चोर डाकुओं का भय रहता है कि मेरा खजाना अंदर लुट जाए, सर्व वस्तु भयान्वित, इस संसार की हर वस्तु में भय समाहित है, केवल एक वैराग्य ही है, वैराग्य नुणा मेवा भयम, एक वैराग्य ही जिसमें भय नहीं है, इसके लिए है योगी वैरागी बन, संसार में हर वस्तु में भय है, सब में भय 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 से मुक्त होना है, कोई जिससे मरा किसी को पानी से भय, किसी को किससे भय, किसी को जानवरों से भय, जिसके जिसकी जिससे मृत्यु होती है उसको उसके दूसरे जन्म में उससे भय रहता है, बचपन से पानी से भय, सांप से भय, किसी से भय, सबसे भय होता है, भूत प्रेत से भय, अकेले सो नहीं सकते कुछ लोग, अंधेरे में नहीं सो सकते, अंधेरे का भय, सन्नाटे का भय, स्मशान का भय, डॉक्टरों का भय, हॉस्पिटल का भय, ट्रैफिक का भय, बीमारी का भय, बीमारी के लिए पांच बातें बोली थी उस दिन संजय भाई, बोलो वरदान में क्या थी,
खुशी खुशी से
बीमारी आ गई तो पांच बातें थी, पहली पॉइंट थी कोई भी बीमारी को खुशी खुशी चुप करनी, एक दूसरी
दवाई,
दवाई को फ्रूट समझ के खाना, दो तीसरा बीमारी का प्रभाव तुम्हारे मन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बीमारी कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, संकल्प में नहीं आनी चाहिए बीमारी, नहीं तो सोल कॉन्शियस नहीं हो सकेंगे, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे, डबल बीमार हो जाएंगे, ये था तीसरा, चौथा और हो गया हिसाब किताब, खुशी से चुप्त करो, और सोचना है कि ये तन तो पुराना है, हर एक को छोटी मोटी बीमारी है, हर एक को छोटी मोटी बीमारी है, ये स्टार्टिंग यहाँ से, तन ही पुराना है, हर एक को छोटी मोटी बीमारी है, इसके लिए बीमारी का प्रभाव तुम्हारे मन पर ना पड़े, मन पर अगर पड़ा तो डबल बीमार हो जाएंगे, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे, सोल कॉन्शियस हो सकेंगे, बीमार अगर होते हो तो फ्रूट समझकर दवाई को खाना है, बीमार अगर होते हो तो खुशी खुशी हिसाब चुप्पू करना है, शक्तिशाली फ्रूट है, तो बीमारी से भी डरना नहीं, सबसे ज्यादा डर बीमारी का रहता है आत्मा को, बीमार होने के बाद मुझे कौन देखेगा, कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा, चिमन भाई पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अभी तो बाकी लोगों को देखते, पर मुझे देखने आना चाहिए, कोई देखने ना आए, कोई ध्यान ना दे, बीमारी में आत्मा की स्थिति बाबा विवाह सब उड़ जाते, अगर कोई योगी आत्म लंबे समय तक योग का अभ्यास नहीं किया, ज्ञान का चिंतन नहीं किया है, और बीमार अगर होता है कोई तो सीधा स्थिति नीचे, कई आत्माओं को असंख्य आत्माओं को देखा है हमने शरीर छोड़ते हुए, बाबा के बच्चों को बहुत सारी आत्माएं याद में थी, 90% जो थी वो याद में नहीं थी, व्यर्थ के संकल्पों में, चिंतन में, खान पान में, इसमें बुद्धि लगी हुई थी, वो कौन, एक बहन थी, खाया मसाला डोसा ही चाहिए था उसको, मसाला डोसा खाया और फिर शरीर छोड़ा, मरते समय बाबा याद नहीं आया,
संतुष्ट हो गई रही,
बाबा याद ही नहीं था, बुद्धि में बाबा ही नहीं आया, चिड़चिड़ापन,
एक बार मणि जगह में था, भोग लेके गया, पहले चाय लेके आओ फिर बात,
आत्मा की शक्तिशाली स्थिति अगर नहीं है तो फिर शरीर इतना तंग करता है कि उस समय शरीर ही खींचता है, कुछ नहीं दिखता है, फिर शरीर 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 का ही चिंतन, यहाँ दर्द वहां दर्द, चिड़चिड़ापन, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, पूरा खुद भी डिस्टर्ब और सब डिस्टर्ब, ब्राह्मणी जो भी होंगे, बड़े बड़े बहने सबको देखा है, यहाँ पे भी मुंबई में भी जो हमारा हॉस्पिटल था बीएससी, उसमें वहां पर भी कई
बीमारी नहीं होता नहीं।
वहां पर ही परीक्षा होती है कि कितने योग था अब तक, कितना योगी जीवन बिताया, वहां पता चलता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, इधर इधर लगाओ, इधर लगाओ, कुछ नहीं, शांतमणि दादी इधर लगाओ, इधर लगाओ, कोई एक मुंह से वर्ड नहीं, कुछ नहीं, और दूसरी आत्मा को ऐसे कुछ करो तो चिल्लाएंगे, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, इधर क्या है, वो क्या है। ये दादियों को देखा हमने, इधर लगाया नहीं मिल रहा, इधर लगाया नहीं मिल रहा, चुप, जैसे कि दर्द ही नहीं है। कैसी अवस्था है, ऐसी भी आत्मा है और वैसी भी आत्मा है। बड़ी बड़ी बहन है सेंटर इंचार्ज, वो भी आंखों के सामने उनको जाते हुए देखा, एकदम चिड़चिड़ापन में, सारा बुद्धि खान पान में, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास चाहिए, एक दो दिन का खेल नहीं है। ये सेवाधारी नहीं चाहिए, वो सेवाधारी चाहिए, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये दवाई ऐसी है, दवाई वैसी है, ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। तो मृत्यु भय, मृत्यु दुख, ये संसार के सारे भय। अभी बाबा कौन से भय के बारे में बात कर रहे हैं? अपने पुराने तमोगुणी संस्कारों पर विजयी। संस्कार प्रबल है, क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं, ये है सबसे पहली निर्भयता है इस बारे में कि भयभीत नहीं होना है अपने ही संस्कारों के से। ये संसार ने ऐसी निर्भयता किसी ने नहीं सिखाई आज तक, पहली बार ही सुना है ऐसी। तीसरा नंबर की तो किसी कोई सोच भी नहीं सकता, ये तो भी सोचते पहले दो, पर तीसरा नंबर की जो निर्भयता है वो तो कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। पहली, दूसरी निर्भयता स्वयं के संबंध संपर्क में दूसरी आत्माओं से संस्कार मिलाना, और उसके भी ऊपर संस्कारों के, उनके संस्कारों को परिवर्तन करना। तो संस्कार मिलाना तो भी वहां तक ठीक है, दूसरे संस्कार, अब खुद के संस्कार परिवर्तन में काम कर रहे हैं, खुद के संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे, दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने में मैं भयता से मुक्त। नहीं, अपकार के उपकार के लिए आगे की स्टेज है, उनके संस्कारों को परिवर्तन करना, करना
अपनी तो बात
ही अपनी नहीं, अभी उनके परिवर्तन करने की बात है, इसमें निर्भयता। और तीसरी निर्भयता
सुनाने में जो दूसरे धर्म वाले हैं बात का परिचय देते हैं, तो
चौथी तीन नहीं, ये दो ही थी, दूसरी थी संबंध संपर्क में स्वयं के संस्कारों को मिलाना और दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करना, ये सेकंड। और तीसरा विश्व सेवा या सेवा के क्षेत्र में
निर्भय हो गए,
वायुमंडल वातावरण में वो आत्माएं अपने अल्पज्ञ सिद्धांतों से परिपक्वता से उसमें वो निर्भय है, उसमें निर्भयता का प्रभाव डालते हैं। वो है शाखाएं, तुम हो तना, तुम में संकोच, उनमें कोई संकोच नहीं, तुम में श्रेष्ठ मत है बाप की, उनमें है अल्पज्ञ मत, अल्प मत है, उस अल्प मत में वो अचल अडोल है, शाखाएं हिल नहीं रही है, शाखाएं अचल है और जो तना है वो हिल रहा है, इसको क्या कहेंगे?
तने ने अपनी शक्ति दे दी हमको।
अरे तुम्हारे पास परमात्मा ज्ञान है, तुमको भयभीत हो, तुमको लज्जा है, तुम में भय है, लज्जा है, डर है। सोचो कोई सभा है जिसमें 10 लोग हैं, आप है 10वें नंबर पर, 9 है सन्यासी, सबसे पहले ने भाषण दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है और सारी ऑडियंस खुश हो गई, वाह, उसने प्रूव कर दिया कि जहां देखू वहां सिया राम मई सब जग जान, सब जगह भगवान ही भगवान है, सारी ऑडियंस खुश। दूसरे ने भाषण दिया फिर कि गीता का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या क्या कहा, उसके ऊपर पूरा भाषण सुनाया। तीसरे ने भाषण दिया कि हम आत्माओं ने कितने सारे जन्म बिताए पशु योनियों में और अभी मनुष्य तन में आए हैं, तो ये तन कितना भाग्यशाली है, तो हमको कितना भक्ति करनी चाहिए। चौथे ने भाषण दिया कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इस कलयुग में तो कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, भक्ति करना, गायन पूजन करना ही सर्वश्रेष्ठ। ऐसे करते करते फिर आपका नंबर आ रहा है कि अभी ब्रह्मा कुमारियों का संक्षिप्त परिचय दो, तो क्या करोगे? बाबा ने कहा उनमें कोई संकोच नहीं, उनमें कोई डर नहीं, वो अपनी अल्प मत से अचल अडोल है, अचल अटल उनका है, और तुम हिल रहे हो। वो बता रहे कि अयम आत्मा, कोई वेदांती सन्यासी है वहां पे जो प्रूव कर रहा है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, सर्व खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ही ब्रह्म है, ब्रह्म चेतन है, अब तुमको प्रूफ करना है ब्रह्म चेतन नहीं है। वो कह रहे हैं कि सारा संसार सब जगह ब्रह्म है, तुमको बताना है ब्रह्म ये नहीं ब्रह्म वो है। वो कह रहा है आत्मा ही ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तुम कह रहे हो आत्मा ब्रह्म में रहती है। वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, संकल्पों का खेल है संसार, कल्पना का खेल है। मुरली में था ना परसों, संकल्प का खेल है सर। पर तुम कहते हो कि नहीं बायोस्कोप ये संसार सत्य है। सन्यासी कह रहा है संसार कल्पना मात्र है, नाम रूप से केवल भास रहा है, ये ब्रह्म ही सत्य और संसार असत्य है, केवल नाम रूप के वजह से भास रहा है। और तुम कह रहे हो कि नहीं संसार सत्य है और ब्रह्म जो है वो रहने का स्थान है। अब इतने लोगों ने भाषण दिया, सारी ऑडियंस एकदम खुश, और अभी तुमको बताना है कि आत्मा परमात्मा निर्भय होंगे।
फर्क पड़ गया है, ये तो 78 की बात ही
तो है,
फर्क पड़ गया है
पर ये वही वाली बात है संकोच।
उस समय क्या हालत हुई, नॉन बोल चुका है आपका नंबर है, उस समय क्या
संकोच नहीं, कोई भय नहीं। यहाँ केवल बोल काम नहीं करते हैं, यहाँ केवल बोल नहीं, हमारे वाइब्रेशन काम करेंगे, हमारी स्थिति काम करेगी। केवल बोल से नहीं होगा, यहाँ पर जो देवी देवता धर्म की आत्मा है, हम वहां बैठ बैठे ही तब तक प्रकाश देते रहे सबको। बाबा ने उस दिन बोला ना साकार मूर्ति में, तुम भाषण करो वो सुने ना सुने पर उन पर छाप तो पड़ेगी, सुनने वालों पर छाप पड़ेगी।
तो विवेकानंद को डांट देते हैं, गीता को विदेश में नीचे रख
निकल दिया तो गिर गया सारा वो है। तो हाँ, जो निर्भयता किसमें, इसमें निर्भयता, हमारे ज्ञान में विश्वास है कि वो सब सुनने के बाद फिर डाउट लग रहा है, अरे ये तो बरबर नहीं, हमारा पता नहीं क्या है नहीं बाबा पता है पर ये शायद इनका ठीक लग रहा है और सब लोग भी वाह वाह कर रहे हैं, हो सकता है इनका भी ठीक है, निश्चय में तो
हिल सकता है,
हिल सकता है। लाठियां पड़ेगी इसलिए तो बहनों को आगे रखा है, ऐसा उल्टा है सारा इसमें, जो शास्त्रों वेद उपनिषद सबके विरोध में है। मुझे अभी 2 दिन पहले यहाँ नक्की के पास 2 सन्यासी मिले थे, 2 यंग सन्यासी और इतने बुद्धिमान प्रकांड पंडित जैसे, एकदम संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किए हुए। मैं तो वहां से जा रहा था, मुझे बोला 1 मिनट, मैंने बोला अभी मुझे जाना है, नहीं प्लीज, और फिर रुका दिया और 1 घंटे तक, और इतना उसने ये किया, मतलब उसको पहले तो यहाँ आके गए थे, यहाँ के लोगों को उसने मतलब ऐसे दिखा जैसे मुझे हाँ यहाँ के आए थे, मतलब एकदम ज्ञानी की बातें कर रहा था, मतलब ज्ञानी तो थे परंतु फिर भी उनको अपने जो वेद उपनिषद शास्त्र उसमें इतना विश्वास था। तो बोले वो सन्यासी थे, 1 24 साल का, 1 32 साल का, और कई जगह रुकते नहीं है, घूमते रहते और एकदम मतलब ब्रह्मचारी। तो उसने मुझे यही 1 घंटा तक बात किया और डिस्कशन किया ब्रह्म सूत्र के ऊपर कि उसमें ऐसा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उपनिषद के ऊपर डिस्कशन किया, ये वो किया। उसके बाद में पूछा कि ब्रह्मचारी तो तुम भी हो और हम भी है, पर हम देख रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे तो स्त्रियां और पुरुष साथ साथ रहते हैं, ये कौन सा ब्रह्मचर्य, क्या इसमें ब्रह्मचर्य हो सकता है? मैंने कहा यही विशेषता है क्योंकि उनसे आर्ग्यू करना, और फिर आपस में बीच बीच में दोनों की लड़ाई भी हुई मेरे से भी, पर मैंने कुछ मतलब शांत, मुझे पता है इनसे बहस करना मतलब लड़ाई को आमंत्रण देना, प्रभाव जो डालना है स्थिति का ही प्रभाव डाल सकते हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनको कन्विंस कराना बहुत मुश्किल है, जिनके रगो रगो में वेद वेदांत उपनिषद भरे हैं, उनको आप कैसे बता सकते। पर बहुत सारी बातें उसने पूछी बताया इस तरह से। तो बाबा ने कहा ये सन्यासी अंतिम टारगेट है, वो अंत में आएंगे, एकदम नहीं आएंगे। नहीं वो बोले भी हम किसी और से नहीं पूछेंगे, आपसे टाइम दो, पता नहीं कहाँ से
साक्षात्कार हो गया,
नहीं नहीं कभी
नहीं।
पर उनको ये समझाना कठिन है, वो पूछ रहा था मतलब ब्रह्म, वो बोला था यहाँ आए 1-2 लल्लू हमको मिले और ऐसे ऐसी बातें बता रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे उन लोग बोले अभी ये सतयुग है, अभी ये त्रेता है, फिर वो भाई को जाना था, वो चला गया, अभी वो दूसरा आगे वाला बताएगा, बोले उसने बताया ये त्रेता है, ये द्वापर, ये क्या ऐसा होता है ज्ञान, मतलब इस तरह से ये कौन है, ये हम इनसे तो बात ही नहीं करना है, ऐसे बोल रहे थे। कैसे मानेंगे वो, जब तुम्हारे रगो रगो में भरा है एक एक युग, सतियों की आयु कितनी, 17 लाख कुछ हजार वर्ष दिए, त्रेता की आयु 12 लाख कुछ हजार वर्ष है, त्रेता की आयु 8 लाख कुछ हजार वर्ष है, कलियुग की आयु 4 लाख कुछ हजार वर्ष है शास्त्रों के आधार से, और हम यहाँ पूरा लपेट रहे 5 हजार में, कैसे मानेंगे? और प्रूफ दो बोलते तो कोई प्रूफ है नहीं हमारे पास, कहाँ प्रूफ है, प्रूफ इसका, इस चीज का तो प्रूफ ही नहीं है, हम खाली इतना बोलते बाबा ने कहा है खत्म। तुमने वो बोल रहा था, तुमने हर जगह लिख के रखा है भगवान आ गया, तो भगवान आ गया मुझे बताओ किस रूप में आया, सगुण रूप में आया निर्गुण रूप में आया, ये पूछ रहा था। ये ब्रह्मा जो था वो कौन से, कौन सा वर्ण था इसका, शूद्र था ये, वैश्य था, ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, कौन से पंथ का था?
सारे वर्णों पंथों से निकला हुआ है।
ये सारे प्रश्न थे उनके। ब्रह्म क्या है, तुम ब्रह्म, ये ज्ञान जब तुम मेडिटेशन करते हो क्या करते हो, ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे पास, ध्यान करते हो, ऐसी सब बातें कर रहा था। ये सारे उनके प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न थे, कठिन प्रश्न, फिर भी उसको बताया बहुत सारी बात उसी के आधार से, जो वो बोल रहा था ना उसी के आधार से, तब चुप रहा हूँ।
उनको मैं तो लल्लू कह के आ गया, तो बहुत आगे उनका उद्धार हो जाएगा इसका, तभी तो बाबा ने
तो ये यहाँ पूरा हुआ। तो बाबा ने कहा परमात्मा का प्रत्यक्षता का आधार सत्यता, सत्यता का आधार निर्भयता और स्वच्छता। फिर आगे क्या बोला निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छद छिद्र ना भावा। Blessed are the pure in heart, for they shall see the kingdom of God. जो शुद्ध हृदय है केवल वही स्वर्ग में आएंगे, कोई वही भगवान को देखेंगे, जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने शिष्य, बाकी नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। इनका हृदय शुद्ध है, अभियंतर मल कबहू न जाई, जब तक ये शुद्धता नहीं आती है, परमात्मा प्रेम नहीं है, तब तक अंदर का मल नहीं जा सकता। तुलसीदास ने कहा ये यहाँ पूरा हुआ। फिर बाबा ने कहा इसके रिजल्ट क्या है, अभी प्रत्यक्षता से क्या होगी रिजल्ट, फिर वो विश्व के बारे में बोला ना, जितने आधार है विश्व में वो सब क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, जैसे उदाहरण दिया बॉम्ब, किसी देश पर बॉम्ब गिराया जाता है तो पहले का कुछ नहीं नजर आता है, जैसे पॉम्पे का उदाहरण देते हैं ना बाबा, फॉल ऑफ पॉम्पे, पॉम्पिया या पॉम्पे कहते हैं इंग्लिश में उसे, या बाबा पॉम्पिया दिखते हैं उसमें, बट वो शब्द जो है पॉम्पे है, पॉम्पे जो शहर था 79 AD क्राइस्ट से 79 ईयर्स बैक, जो शहर था एक ही दिन में पूरा शहर के शहर 20,000 पॉपुलेशन पूरा समाप्त हो गया एक ही दिन में, जो ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम भी कुछ अच्छा था, मुझे याद था, भूल गया, वो जो ज्वालामुखी फटा फटा उसके ऊपर कई मूवीज बनी हुई है, बहुत सारी फिल्में बनी हुई है। पॉम्पे का इतना बड़ा शहर, वो ज्वालामुखी फटा, उसके पहले लोगों को पता भी नहीं था ज्वालामुखी क्या होता है, वो तो बस पहाड़ समझते थे ऐसा पहाड़ है, उनको कभी देखा ही नहीं था किसी ने ज्वालामुखी क्या होता है, फर्स्ट टाइम। तो वो जो फटा उसमें से निकला वो पूरा एक मूवी में तो पूरा दिखाया, सुबह 6 बजे, फिर 10 बजे क्या हुआ, 2 बजे क्या हुआ, 3 बजे क्या हुआ, 4 बजे क्या हुआ, 5 बजे, और ये सारा देखने वाला एक ही व्यक्ति था जो जीवंत रहा, उसी ने अपनी किताब उसमें लिखा, उसी के आधार से ये सारा कुछ हमको पता है, नहीं तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो पूरा मलबा छा गया, तो लोगों को पता ही नहीं यहाँ शहर है। ये शहर की खोज 1500 साल के बाद किसी एक व्यक्ति ने की, फिर ये सारा मलबा निकाला और उसको देखा तो वहां दिखे उसको हड्डियों में लोग ऐसे कोई बैठा हुआ है, मतलब जो जिस पोजीशन में था उसी में उसकी मृत्यु हुई। कोई ऐसा दुखी था, कोई ऐसा गले मिलके था किसी को, वो सारी हड्डियां उसी आधार से दिखी, सारा है उसमें दिखाते, तो वो शहर के शहर खत्म हो गया। तो बाबा ने कहा फॉल ऑफ पॉम्पे, पॉम्पे नाम का शहर था, अभी वो टूरिस्ट प्लेस है इटली के पास, बहुत बड़ा
इटली।
तो जैसे उस बॉम्ब से सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो ये जब परमात्मा बॉम्ब गिरेगा तो अल्पकाल के सारे साधन समाप्त हो जाएंगे और एक ही यथार्थ साधन राजयोग के द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा, विश्व पिता विश्व के आगे दिखाई देगा, रचता सृष्टि का रचता रचना को दिखाई देगा, ऐसी प्रत्यक्षता होगी। तो ये परमात्मा बम को क्या करो, अभी
फेंको,
दिस इज, ट्रेन से जाते जाते और निखिलेश भाई जहां दिखा बाबा का झंडा नहीं दिख रहा, एक बम फेंक के आगे, ठीक है। बाबा ने कहा ये बम फेंकते जाओ, इधर फेंको उधर फेंको, यहाँ विस्फोट वहां विस्फोट, परमात्मा प्रेम का धूल उड़ेगा जिसमें आत्माएं इधर खींच के आ जाएगी। ऐसा कार्य करना है, और ये होगा सत्यता से, ये होगा निर्भयता से, ये होगा स्वच्छता से, राजयोग से। तो ये महानतम कार्य हमारा करना है। आगे क्या बोला फिर बाबा ने, पार्टियों से मुलाकात, क्या बोला, भाग्य का सितारा चमकता हुआ नजर आया, स्वयं भगवान गायन करते, तुम अपना गुणगान करो भगवान भी गुणगान करते, जो भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं मिलेगा, अब नहीं तो कब नहीं। दुनिया में भी कोई चिता सितारा चमकता है तो अपनी ओर आकर्षित करता है सबको, न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक वहां पर नजर जाती है। तो यहाँ पर भी न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक नजर जाती कि ये सितारा कहाँ से आए, तो अपने भाग्य का सितारा सदा स्वयं को भी दिखे और विश्व को भी दिखाई दे, स्वयं को भी अनुभव और दूसरों को भी अनुभव। मधुबन निवासियों को कोई देखे तो त्याग दिखाई ना दे, बाबा ने कहा है, नहीं तो कहेंगे अरे बाप रे इतना बड़ा त्याग करके आ गए, त्याग दिखाई ना दे, भाग्य दिखाई दे, त्याग दिखे ही ना कुछ। जैसे वो कहते हैं ना, कोई एक व्यक्ति सन्यासी के पास गया, कितने बड़े सन्यासी हो तुम, बाप रे इतना बड़ा तुमने त्याग किया। सन्यासी कहते मेरे से बड़े त्यागी तो तुम हो। गृहस्थी को कहता है कि मेरे से बड़े तुमने, देखो इतना बड़ा परमात्मा स्वयं, तो ज्ञान का सागर, अतीन्द्रिय सुख जिससे मिलता है, अविनाशी प्राप्तियां जिससे, उसको त्याग कर इस तुच्छ संसार को तुमने पकड़ के रखा है, मेरे से बड़े त्यागी तो तुम हो।
हरे की त्याग की अपनी
श्री भगवान को देखकर कोई माता है बोला ऐसा रहोगे, हाथ में कुछ नहीं, सौभाग्य के तिलक नहीं,
आभूषण
ऐसा ही सफेद साड़ी में जिंदगी भर का कुछ बिताओगे, त्यागी है ना।
तो ये फिर उसके बाद ऊंची स्थिति के बारे में
बाबा ने बोला, और ही ब्यूटीफुल हो गया आप दो, क्या त्याग किया।
अच्छा है ना, ये रोज रोज चिंता नहीं है, ये पहनू वो पहनू या ये वो वो
कौन सा रंग क्या कर रहे
हैं।
दादी बन गए।
ऊंची स्थिति के बारे में क्या बोला, बोल दिया फिर भी बोलो, चार चीजें होगी, ऊंची स्थिति अभी है तो क्या क्या हो जाएगा, सतयुग में उच्च पद हो जाएगा, राज में ऊंच हो जाएंगे, ये हो गया सत्य, फिर भक्ति में दोनों तरफ से ऊंच, भक्त भी ऊंच, कोई छोटे मोटे भक्त नहीं होंगे, अच्छे पावरफुल भक्त होंगे, हाँ मतलब संसार के आगे उदाहरण वाले भक्त, ऐसे उदाहरण, ऐसे कोई छोटी मोटी भक्ति करने वाले नहीं, पराभक्ति। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक परा एक वैधी, वैधी मतलब पूजा पाठ अनुष्ठान ये सब, और परा मतलब तुलसीदास मीरा, इनकी ऊंची भक्ति है, बहुत श्रेष्ठ भक्ति जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम है, त्याग है, तपस्या है, सूरदास ये सब जो श्रेष्ठ भक्त भक्तमार्ग वो वाली भक्ति, हाँ ये सब रायदास ये सब जो है ना, इनकी जो भक्ति थी वो पराभक्ति का कहलाती है, परा और अपरा ऐसे दो है, वैधी या परा, ये सारे जितने भक्त है श्रेष्ठ, हम भी ऐसे महान भक्त होंगे जो दिल से सच्चे हृदय से उसकी भक्ति करेंगे, अव्यभिचारी भक्ति, सत्य का है। हरिचंद्र भक्त नहीं है, वो भी एक भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी भक्ति, पराभक्ति, वैधी भक्ति, और भी पांच प्रकार की अलग भक्ति है, नवधा भक्ति वो अलग, नव भक्ति है वो अलग, पांच प्रकार की वो अलग, पांच में मतलब एक मतलब शांत भक्ति जिसमें वो मालिक है, हम सब उसकी संतान है, हम जो है वो दूसरा सब करते है उसमें, फिर उसके बाद में ये मतलब रिश्ते के हिसाब से, कोई उसको दोस्त बनाता है, कोई उसको अपना साजन बनाता है, मधुरा भक्ति, अलग अलग प्रकार की भक्ति, सखा भक्ति, दास्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, मधुरा भक्ति और शांत भक्ति, ये पांच प्रकार की अलग भक्ति, और नवधा भक्ति वो अलग। ये सारी हम ये सब करने वाले हैं, तो हम भक्ति में भी उच्च टॉपर हीरो पार्टनरी
करने वाले कराने वाले
नहीं कराने कराने वाले भी इष्ट देव के रूप, हम इष्ट देव में भी उच्च, मतलब हमारे सबसे ज्यादा भक्त, पूजा भी धूमधाम से, अनगिनत भक्त, पूजा भी धूमधाम से, रोज पूजा, विधि पूर्वक पूजा, युक्ति युक्त पूजा, इष्ट देव की जो नौ निशानियां बताई थी उस दिन आठ, वो सब हम में होगा, ऐसे इष्ट देव भी हम। ये था उच्च। फिर वरदान, वरदान हो गया वही ना, ना अति ऊंचम ना अति नीचम, ना एकदम उच्च ना एकदम नीच, ना एकदम मध्यम, पर वैसा बोलते हैं ऐसा ना बोले, बाबा ने कहा साधन मिल रहे हैं, साधन मिलते रहे, अभी बोलते हम लोग उधर गांव में सेवा करने जाते थे ना, वहाँ के ग्राफिया लोग तो बोलते हैं इनके पास तो पैसे छापने की मशीन है, ब्रह्मा कुमारियों के पास, ऐसा बोलते हार्ड वर्ड। पर वो चलो वो जो भी हो, पर हमारे चलन चेहरे से तो ऐसा ना दिखे, वो नहीं दिखे,
अच्छा भी मानते हैं
वो तो है,
सारे लोग अच्छा भी मानते हैं, तो हाँ। बुद्धि होती है वैसे देखे।
अभी तो अच्छा मानने लगे हैं, ये 78 में बाबा ने बोला है। वरदान स्लोगन,
स्लोगन जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख,
सब जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख, सब करेंगे। तो ये अपना आज का मूल्य 5 मिनट है, एक हफ्ते का कुछ पावरफुल, वो भक्ति के कॉन्सेप्ट है, हमारे इधर लागू नहीं होते। निर्गुण अर्थात जो निराकार है, ब्रह्म, ब्रह्म को निर्गुण कहा जाता है, और जब ब्रह्म साकार रूप धारण करता है तो उसे अवतार कहते हैं, अवतारवाद। जैसे पानी बहुत सारा है, कहीं कहीं पानी बर्फ जमा हुआ है, तो वो जो बर्फ है वो अवतार है, कंडेंस्ड ब्रह्म, वो इज नोन एज अवतार। पर वही जैसे राम है, कृष्ण है, इनको भगवान माना जाता है, वो कहाँ से आते हैं, वो उस ब्रह्म का ही है अभिव्यक्ति है, तो वो जो वो है साकार रूप, सगुण परमेश्वर, निर्गुण परमेश्वर, पर्सनल गॉड, इम्पर्सनल गॉड, ऐसे उसको कहा जाता है। और ब्रह्म जो है वो एक होमोजेनियस सब्सटेंस है, ब्रह्म अर्थात कोई भगवान ने, ये सन्यासी वेदांतवाद है, ये वेदांत कहते हैं इसको, अद्वैतवाद, वेदांतवाद शंकराचार्य ने जो रखा सिद्धांत, ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्म है एक ही, आप भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, जो ईश्वर है वो भी ब्रह्म, नीचे सब जगह वन होमोजेनियस। जैसे एक मिट्टी है, वो मिट्टी से एक ट्रे में मिट्टी है, उस मिट्टी से हनुमान बनाया है, उसी मिट्टी से राम बनाया है, और बाकी सब मिट्टी है। तो इसमें तीन बातें आती है, एक सबसे पहला सिद्धांत है विशिष्ट वेदांतवाद, नहीं सबसे पहला है भक्ति, द्वैत, जैसे हमारा जो है द्वैत है, ईश्वर अलग आत्माएं अलग। तो हनुमान कहता है मैं आपका दास हूँ, मैं भक्त हूँ, आप भगवान हो, यह है द्वैतवाद। दूसरा फिर हनुमान कहता है कि मुझ में मिट्टी है और तुम में भी मिट्टी है, जो तुम में है वो मुझ में है, यह है विशिष्ट अद्वैतवाद कि ईश्वर हम में है और हम उसमें है। तीसरा है वेदांतवाद, वो हनुमान कहता है कि मैं भी मिट्टी हूँ, तू भी मिट्टी है, और ये जो संसार है वो भी मिट्टी है, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, और जो है वो भी ब्रह्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रगों में समाया हुआ है सन्यासियों के, उसको आप आत्मा परमात्मा और ये इसका ज्ञान नहीं दे सकते। सारे वेदांत में, सारे उपनिषदों में यही ज्ञान है, चार जो महावाक्य है कि सर्व खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा भी ब्रह्म है। परंतु आत्मा और ब्रह्म अलग क्यों है, क्योंकि एक ग्लास है जिसमें हवा है, ग्लास के बाहर भी हवा है, एक बॉटल में हवा है, ये भी हवा है, वो भी हवा है, परंतु ये आवरण है नाम रूप के कारण, ये आत्मा भास रही है, ये जगत भास रहा है, पर है दोनों एक ही। अगर इस नाम रूप को हटा दिया जाए तो अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, तुम वो हो।
लोग
तो समझ
नहीं, बात तो ठीक है,
बोले कि यही सारा, ये कितने 2500 साल से जब से शंकराचार्य ने ये सारा यही सिद्धांत चलते आ रहा है अद्वैत वेदांत का, ये और वो एक ही है। तो और संसार मिथ्या है, जैसे उस दिन बोला ना मुरली में, संकल्पों की दुनिया संसार के लोग कहते, पर बाबा कहने नहीं, ये दुनिया सत्य है, और हम तो कोई दूसरा ही, वो इस संसार को ब्रह्मांड मान रहे, हम इसको ब्रह्मांड समझते नहीं, हम ब्रह्मांड उसको समझते, वो कहते प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य, हम कहते ब्रह्म अचेत है, तत्व है, वो जड़ है, छठा तत्व है, ऊपर रहते, मतलब कितना भिन्नता है हमारे और उनमें, हमारा ब्रह्म ऊपर है, उनका ब्रह्म यहाँ, और वो आत्माएं ज्यादा समय ब्रह्म में रही ना, 2500 साल, इसके लिए जब नीचे आती है तो ब्रह्म ब्रह्म कहती रहती है उनको ज्यादा शांति प्रिय है क्योंकि ब्रह्म में शांति रहती है। शंकराचार्य सातवीं शताब्दी में आए, अभी अपनी 21वीं शताब्दी चल रही है, 17th सेंचुरी शंकराचार्य का।
1400 वर्ष लिखा
है वो झाड़, तो उसको कभी और चर्चा करेंगे। उस झाड़ में बहुत सारा कुछ है जो कि और उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए कुछ कुछ। हमारा जो झाड़ है ना, उसमें बहुत विवाद हो सकता है उस झाड़ में, इतनी सारी चीजें उसमें हैं, पर वो क्योंकि भगवान ने कही हुई है। और पर संसार का जो इतिहास है उससे वो कोरिलेट नहीं करता है। कोई अगर इतिहासकार आ जाए और आप उसको ये झाड़ देगा, पूरा झटक झटक देगा पूरा, और ऐसा बकवास है क्योंकि कुछ भी मैच नहीं करता है। जो इतिहासकारों ने जो रखा है कि ये समय ये आया, ये समय ये आया, और आप तो ये ऐसे बता रहे हो कि ये सब गलत है। डायनासोर का बात तो फिर भी ठीक है, पर आप जो बता रहे हो इब्राहिम कब आया, उसके इतने साल बाद ये खाया, आपने जो गैप बताया 250 ईयर्स का बताया बुद्ध और क्राइस्ट के बारे में, संसार इसको नहीं मानता है। उसके हिसाब से तो क्राइस्ट से 500 साल पहले आया है बुद्ध, मतलब बहुत विवादास्पद। अगर उस पर अगर कोई आप बुद्धिमान व्यक्ति के साथ चर्चा करो ना, तो आपकी हार निश्चित है, समझ लो। केवल योग बोलते उसको झुका सकते हो। बहुत सारे संवंत है ना, जैसे हमारा जो एक ये जो ग्रिगोरियन संवंत एक है, विक्रम संवंत। विक्रम संवंत भारत में नहीं माना जाता, नेपाल में मेन जो है वो है विक्रम संवंत, भारत का वो ग्रिगोरियन दूसरा संवंत है। तो इस तरह से बहुत सारे, इस्लामियों का अलग है, मुसलमानों का उनका अपना है, क्या कहते हैं उसको, भूल गया उसका नाम भी था, हाँ वही वो अलग अलग है। तो उसमें बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है। चलो ये हो गया, और कोई पॉइंट अपना अपना पार्ट है, किसी की निंदा नहीं कर सकते, किसी का दोष नहीं। उनका है कच्चा, तुम्हारा है पक्का, तुम और राजयोगी वो है हटके, ये क्या हट योग ऋषि, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो।
बाबा ने बोला था कि फर्स्ट क्लास भी ट्रेटर होते हैं, थर्ड क्लास भी होते हैं। थोड़ा सा ज्ञान मिला तो
बात को भी अपने को भी बात समझते हैं।
तो ये फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास ट्रेटर
यहाँ बोले लंबा समय रहने के बाद विरोधी हो गए। थर्ड क्लास मतलब जो संसार में पहले से ही ढीले डाले थे।
अच्छा,
और फिर हिल गए। वो हिलना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अंग नेम नहीं लगाना है, बुद्धि भटकती है। बड़ी सूक्ष्म बात बोली है, पतित बोल दिया सीधा उनको।
याद में नहीं रहते,
जो याद में नहीं है वो पतित है। मासी का घर नहीं है, स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करो और बाकी सब त्याग कर। दिन बोला ना, केवल ये याद, एक ही याद है, बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, अपार खुशी रहेगी, अथाह खुशी रहेगी।
और बाबा ने एक मिसाल दिया ब्रह्मा बाबा के बारे में, इसको भी बंधन मुक्त बनाया,
इसको भी बंधन मुक्त बना दिया,
छुड़वा दिया इसको।
अगर ये भी रहता तो धंधा दूरी नहीं तो क्या सोचेगा, सोच ही नहीं।
तो सब अंत में एक ही याद आया, इसलिए तुमको भी बंधन मुक्त।
और कुछ बाबा को अपने ऊपर भी वंडर लगता है, कमाल है उसकी।
पढ़ा नहीं, कोई बाप
मेरा कोई बाप नहीं, मैंने किसे पढ़ा नहीं, सतयुग में मैं आता नहीं हूँ पर भी सतयुग का वर्णन करता हूँ, भक्ति मैंने की नहीं पर भक्ति में क्या क्या करते होता है ये मैं बताता हूँ, शादी मैंने कभी की नहीं पर शादी वैवाहिक जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है वो भी मैं तुमको बताता हूँ। उसके 3 कारण बताए उसी मुरली में बाबा ने, कौन से कारण है बोलो, उसी मुरली में बाबा ने कहा, एक तो आदि से अंत तक मुझ में ये पार्ट नूंदा हुआ है, एक दूसरा क्योंकि बाप 20 रुपए, बाप में ओरिजिनल नॉलेज है, बस यही कारण।
नहीं, ये तो ठीक है,
आई कहाँ
से,
आई कहाँ से,
किसने नूंदी,
ये सब गोल गोल घुमाने वाले शब्द
है।
इस ड्रामा के कुछ राज वो राज ही रखता है, सब थोड़ी ना बता देता है। अगर सब बता दे तो उसकी कॉलर भी तो टाइट होनी चाहिए ना संगम पर। सब नहीं देगा वो, सब नहीं बता।
और अगर वो बता रहे तो हम, हो सकता है हमारी बुद्धि नहीं बैठती है, हम और भ्रमित हो जाए।
हाँ, वो उतना ही बताए जितना तुम्हारे काम का है। सारा बता दिया ना तो बुद्धि भटक जाएगी। सब बता दिया अगर तुमको, बात नहीं है परंतु पता चलेगा ना। अभी तो पूरा काम हुआ है, टाइम है ना, चल रहा है ना, पढ़ाई चालू है, पढ़ाई इज ऑन, सब खत्म हुआ बोला का है उसने, चालू है पढ़ाई, चालू है, रास खुलते जाएंगे, रहस्य उद्घाटन होंगे। धीरज धरो, अधीर क्यों हो रहे हो? सिंपल ठीक है। कल और आज 5000 साल था, कल ही तो देवता थे, अभी संगम तो आपका स्थान है। यहाँ बैठ कर तुम फलक से कहते हो कि हम ही देवता देव और हम ही बनेंगे, कल और आज का खेल है पूरा। हाँ,
महात्मा
नहीं, उनको तो बोल नहीं सकते ना। मुश्किल है, मुश्किल है क्या कल्याण करना। वो आएंगे, झुक जाएंगे एक दिन आप ही। बोला ना ये बूढ़ी बूढ़ी माताओं के आगे वो झुकेंगे। एक मुरली तो उसके भी चली माताओं के ऊपर, ये बुढ़िया को ज्यादा समझते हैं।
आत्मा समझ बाप को याद करो
बस। एक ओपीडी में पेशेंट आई थी, मैंने बोला जब तक आप मुझे मुरली की पॉइंट नहीं सुनाते आपको दवाई नहीं दूंगा। अरे बाप रे, ऐसे करके बैठ गए। बहुत सीरियस से बोला। फिर शाम मैंने बोला आज की मुरली में रोटी के बारे में क्या बोला? मैंने बोला सेवा कहाँ करते हो? बोले रोटी डिपार्टमेंट। बोला आज रोटी के बारे में क्या बोला? तो ऐसे ही करके। फिर शाम को वापस आई 4 बजे बताने, हाँ हाँ वो नरम रोटी और वो सूखी रोटी उसके वहां पर बोला बाबा। मैं बोला अभी क्यों आया ये बताने के लिए आयु? आज पूरा ढूंढा कहीं मिले
नहीं।
अप्राप्ति में भी प्राप्ति का अनुभव,
योग की सिद्धि,
इधर भी ज्ञान सरोवर से आई खास बताने के लिए है। अच्छा, ओम शांति।
दर्शन जी सेवा करेगी।